नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के पांचवें और शेष चरणों के लिए प्रचार जोरों पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको गोली लगने के बाद जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में आज से गर्मी और बढ़ने की संभावना व्यक्त की। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। लोकसभा चुनाव के पांचवें और शेष चरणों का प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र के नाशिक जिले के डिंडोरी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने जिस तरह काम किया उसकी विश्व ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार किसानों, युवाओं और महिलाओं तथा वंचित लोगों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी 2 दिन के चुनावी दौरे पर रहेंगे। एक रिपोर्ट।
2 दिन 7 रैलियां, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11 लोकसभा क्षेत्रों पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वे आज जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ में सार्वजनिक सभाएं करेंगे और कल वे बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्रों में 3 और रैलियों को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर आज एक और सियासी संग्राम फतेहपुर में होगा, जहां विपक्षी दलों के दिग्गज नेता अखिलेश यादव और मायावती के अलावा भाजपा से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रैलियां करने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई राहुल गांधी के लिए रायबरेली संसदीय क्षेत्र में प्रचार करेंगी, जबकि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार भी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
इस बीच आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल कल रात लखनऊ पहुंचे। वे आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में शामिल होंगे। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की गतिविधियां जोरों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बीजू जनता दल के नेता प्रचार में लगे हैं। गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कल सोराडा में कटक में प्रचार किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुंदरगढ़ और बरगढ़ संसदीय क्षेत्र में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे तथा भुवनेश्वर में रोड शो भी करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कल एक बाइक रैली में शामिल हुए। उन्होंने बलांगीर में एक जनसभा को भी संबोधित किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल प्रमुख नवीन पटनायक ने राउरकेला में जनसभा को संबोधित किया। पंजाब में मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने लोकसभा चुनाव के लिए कुल मतदाताओं की अंतिम सूची जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र तैयार कर लिए गए हैं।
राज्य में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए 4 मई अंतिम तारीख थी और जमा करवाए गए आवेदनों पर 14 मई तक निर्णय लिया गया। सूची के अनुसार अब मतदाताओं की कुल संख्या 2,14,61,739 है। इनमें 1,12,86,726 पुरुष, 1,01,74,240 महिला और 773 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 18 से 19 वर्ष आयु के बीच के मतदाताओं की संख्या 5,38,715 है, जो कि पहली बार मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसी तरह 1,89,855 मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,58,718 है। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
लोकसभा चुनावों के लिए प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में हम पश्चिम बंगाल के हावड़ा संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में हावड़ा लोकसभा सीट के लिए 20 मई को मतदान होगा। इस सीट पर 7 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हावड़ा निर्वाचन क्षेत्र के सभी 7 विधानसभा क्षेत्र हावड़ा जिले के अंतर्गत हैं। इस सीट पर 17 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें लगभग 8,59,000 महिला मतदाता शामिल हैं। हावड़ा लोकसभा क्षेत्र 2009 से तृणमूल कांग्रेस के पास है। टीएमसी सांसद अंबिका बैनर्जी के निधन के बाद 2013 के उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के प्रसून बैनर्जी ने ये सीट जीती थी। हावड़ा सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने प्रसून बैनर्जी को फिर से टिकट दिया है। बीजेपी ने डॉक्टर रथिन चक्रवर्ती को मैदान में उतारा है। कांग्रेस समर्थित CPIM उम्मीदवार सब्यसाची चटर्जी है पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी को अधिक मत मिले थे जबकि वाम दलों का वोट प्रतिशत घटा था। 2019 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के वोट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। पश्चिम बंगाल से कल्याण राहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजयलक्ष्मी कासोडिया।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में कल रात 2 वाहनों की टक्कर में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 व्यक्ति घायल हो गया। अपर पुलिस अधीक्षक रूपेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक जीप और एक अन्य वाहन से टकरा गई जिसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि जीप से टकराए वाहन का ड्राइवर दुर्घटना के बाद फरार हो गया। मुंबई में घाटकोपर में बिलबोर्ड गिर जाने से त्रासदी में मरने वालों की संख्या 16 हो गई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के अधिकारियों ने कल दुर्घटना स्थल पर फंसी एक कार से 2 और शव निकाले हैं। सोमवार शाम तेज हवाओं और बेमौसम बारिश के कारण घाटकोपर के छेदा नगर में एक पेट्रोल पंप पर एक विशाल होर्डिंग गिर गया था। घटना में लगभग 75 लोग घायल हो गए थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 के अधिसूचना के बाद नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट जारी किया गया है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कल नई दिल्ली में 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। गृह मंत्रालय के अनुसार कई अन्य आवेदकों को डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र ईमेल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। ये आवेदन 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों से प्राप्त हुए थे। गृहमंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि दशकों का इंतजार समाप्त हुआ। उन्होंने कहा कि आज NDA सरकार ने आजादी के समय किया गया वायदा पूरा किया। एक समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में श्री शाह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है। सिक्किम आज 49वां राज्य दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम का 22वें राज्य के रूप में भारत में विलय हुआ था। इसके लिए संसद ने संवैधानिक संशोधन किया था। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम वासियों को बधाई दी है और कहा है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विलय के बाद सिक्किम ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2024 में पहले दिन कल 75% से अधिक आवेदकों ने भाग लिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के अनुसार परीक्षा देश और विदेश के सभी निर्धारित स्थलों पर सुचारू रूप से संचालित की गई। इससे पहले NTA ने कहा था कि 15 मई को होने वाली CUET UG परीक्षा कुछ कारणों से दिल्ली के केंद्रों पर स्थगित कर दी गई है और वो अब 29 मई को होगी। NTA 8 दिनों तक CUET UG 2024 परीक्षा मिश्रित प्रणाली में आयोजित करेगी जिसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा और पेन और पेपर से लिखने के विकल्प होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री का पद संभालने पर लॉरेंस वोंग को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए श्री वोंग के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की हालत गंभीर बनी हुई है। कल ब्राटिस्लावा के उत्तर पूर्व में उन पर हमला हुआ था। रक्षा मंत्री रॉबर्ट कालिनक ने बताया कि कल 3 घंटे से अधिक समय तक रॉबर्ट फिको की सर्जरी हुई। उस समय उनकी स्थिति बेहद नाजुक थी। उप प्रधानमंत्री टॉमस ताराबा ने कहा कि इस समय उनकी हालत में सुधार हुआ है। राष्ट्रपति सहित स्लोवाक नेताओं ने गोलीबारी को लोकतंत्र पर हमला बताया है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे हिंसा का भयावह कृत्य बताते हुए निंदा की है। कथित हमलावर को घटनास्थल पर ही हिरासत में ले लिया गया, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक औपचारिक रूप से उसकी पहचान नहीं की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिन की सरकारी यात्रा पर आज सुबह चीन पहुंचे। अपना पांचवां कार्यकाल शुरू होने के बाद पुतिन की यह पहली विदेश यात्रा है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि श्री पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज शिखर वार्ता होगी और दोनों नेता कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। और अब खेल खबरों के साथ आकर्षिता।
भाला फेंक खिलाड़ी ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में कल फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता। वे तीन राउंड के बाद दूसरे स्थान पर थे। चौथे राउंड में उन्होंने 82.27 मीटर दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चोपड़ा ने आखिरी बार 2021 में इसी स्पर्धा में घरेलू प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जब उन्होंने 87.80 मीटर दूर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। चोपड़ा वर्ष 2022 में डायमंड लीग चैंपियन बने, 2023 में विश्व चैंपियन बने और चीन में एशियाई खेलों में स्वर्ण जीता। इसी के साथ ही आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में कल रात राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 144 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स ने 18 ओवर और 5 गेंदों में 145 रन बनाकर मैच जीत लिया। राजस्थान के लिए ये उनकी चौथी हार थी, लेकिन वे 16 अंकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता की टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। टाइटंस पर जीत हासिल कर सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेऑफ में जगह पक्की हो जाएगी।
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आज से गर्मी और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है। विभाग ने अगले दो दिनों में गुजरात, कोंकण, सौराष्ट्र और कच्छ में भीषण गर्मी का भी अनुमान व्यक्त किया है। 18 और 19 मई को दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में भी इसी तरह की संभावना है। इस बीच दिल्ली में दिन के समय तेज हवाओं के साथ साथ भीषण गर्मी चलने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर।
धन्यवाद लवलीन। अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। संशोधित नागरिकता कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद 300 लोगों को नागरिकता प्रदान किए जाने को दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स ने पहली खबर बनाया है। पत्र लिखता है कि इन लोगों का दशकों का खत्म हुआ इंतजार, पुनर्जन्म पर मुस्कुराए शरणार्थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा डेंगू के टीकों को मंजूरी दिए जाने को पहली खबर बनाते हुए राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, 2 खुराक वाला ये टीका दुनिया भर के लाखों लोगों को मच्छर जनित इस बीमारी से बचाने में मदद कर सकता है। लोकसभा चुनाव के शेष 3 चरणों के लिए प्रचार के दौरान नए वादों और दावों की वर्षा हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों में है। राष्ट्रीय सहारा ने मुख्य चुनाव अधिकारी के इस बयान को दिया है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स की ले रहे मदद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ये आदेश कि विवाह में मिले उपहारों की सूची बनाए वर वधु पक्ष हस्ताक्षर करें, अमर उजाला में है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है कि ऐसा करने से लोग दहेज के निरर्थक मुकदमों से बचेंगे। इस साल मॉनसून अपने आगमन की निर्धारित तारीख से एक दिन पहले 31 मई को केरल में दस्तक देगा। दैनिक भास्कर ने इसे खुशियों की बौछार एक दिन पहले शीर्षक देते हुए लिखा है, अल नीनो खत्म। पत्र ने लिखा है, केरल सबसे पहले और आखिर में राजस्थान पहुंचेगा। उधर अमर उजाला की खबर है, अप्रैल में 45 गुना अधिक रही भीषण गर्मी, कई जगह तापमान 40 डिग्री से अधिक। चार धाम यात्रा के दौरान लोगों के सैलाब को नव भारत टाइम्स ने सचित्र देते हुए लिखा है, बिना रजिस्ट्रेशन एंट्री करने पर होगी रोक। उधर दैनिक भास्कर ने ऋषिकेश में बने एक मड हाउस का चित्र देते हुए लिखा है, 18 देशों के 90 लोगों की मदद से बनाइए घर।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें और शेष चरणों के लिए प्रचार जोरों पर, विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको गोली लगने के बाद जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में आज से गर्मी और बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।